aqui.
दोनों हाथ कृपा करके जोड़िए, दोनों हाथ जोड़कर इसी प्रकार से नमस्कार का मुद्रा धारण कीजिए। हृदय के निकट इन दोनों हाथों को लेकर आइए। इससे एक विनम्र भाव हृदय में जागृत होता है, जो कि हमारे ये बहुत ही अनुकूल है, हमें विनम्र बनाता है, जो भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत अनुकूल है और शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत अनुकूल है। तो दोनों हाथ जोड़कर मेरे बात बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा।
तो सर्वप्रथम मैं इस संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस धरातल पे इस गंगा रूपी भक्ति का प्रवाह जागृत कराया है, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार पूरे विश्व में कराया किया है, उनके चरणारविंद में नतमस्तक होकर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आज के सत्र की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो आप सबको आज के शाम के विशेष कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनावाद संघ की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विषय का शीर्षक है सुख की खोज। इस संसार में हर एक व्यक्ति सुख के खोज में है। कोई नहीं यह कह सकता है कि हमें सुख की खोज नहीं है, हमें सुख की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम कहते हैं कि सुख की खोज, या जैसे ही हम कहते हैं कि खोज, ये शब्द खोज का होता है कुछ ढूंढना, खोज, तो हम खोज करके शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका तीन अर्थ निकलता है। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, वो मोबाइल गुम गया, तो पहला अर्थ होता है कि मेरे पास एक मोबाइल है और इस मोबाइल को मैं खोज रहा हूं, कहीं गिर पड़ा, चाबी गिर पड़ा, मैं खोज रहा हूं। मेरे पास मोबाइल था, अब मैं मोबाइल को खोज रहा हूं। दूसरा अर्थ यह है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है और मैं दुकानों में अलग अलग दुकानों में मोबाइल खोज रहा हूँ, कौन सा मोबाइल अच्छा है, कौन से दुकान में मोबाइल मिलेगा, मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, फिर दूसरा मोबाइल खोज का। तीसरा अर्थ है कि मेरे पास मोबाइल है पर इससे बेहतर, इससे अच्छा क्वालिटी का मोबाइल का मुझे खोज है। अब जो मोबाइल है इससे अच्छा चाहिए, ये तो ठीक है पर इससे अच्छा चाहिए। तो इस प्रकार से खोज का तीन अर्थ निकलता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख का खोज हम सब में है। हो सकता है कि किसी के जीवन में सुख था, उस सुख कहीं पे खो गया है, अब उस सुख के खोज में है हम। कहां है वो सुख, कहां है वो सुख, कहां है वो सुख, हम उस सुख के खोज में है। या अब तक हमने सुख का अनुभव नहीं किया है इसलिए हम सुख के खोज में है। कहां है वो सुख, क्या फिल्मों देखने में ये सुख मिलता है, या खेल खेलने में मिलता है, या अलग अलग लोगों के क्लबों में जाने से ये सुख मिलता है, कहां ये सुख मिलेगा, मैं सुख का खोज, ये सुख की खोज में। या मेरे जीवन में तो सुख है पर मुझे और सुख चाहिए, और सुख चाहिए, अब जो सुख है उससे और ज्यादा। जैसे कोई दुकानदार है, कोई व्यक्ति है, उसके पास हजारों रुपये हैं या लाखों रुपये, पर और रुपये चाहिए, इस प्रकार अब जो सुख है उससे ज्यादा मुझे सुख चाहिए, अच्छा क्वालिटी का सुख चाहिए। तो इसी प्रकार से सुख के खोज में हर कोई है। जो जो सुख को अब तक अनुभव नहीं किया वो भी सुख के खोज में है, जो दुख का अनुभव कर रहा है, जो सुख का अनुभव किया था दुख का अनुभव कर रहा है वो भी सुख के खोज में है, और जो सुख अनुभव कर रहा है वो और ज्यादा सुख का अनुभव करना चाहता है, और ज्यादा सुख के खोज में है। इसी प्रकार से हर कोई संसार में सुख के खोज में, एक चींटी से लेके हाथी तक, एक चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, हर कोई सुख के खोज में है, क्योंकि सुख को पाना हम सब का जन्मसिद्ध अधिकार है। वास्तव में सुख जो है हमारी, जो सुख की मांग है हमारी, जो सुख की मांग है वो हमारी सुख की मांग है, वो ऐसा सुख है जो बढ़ता जाए, जो बढ़ता जाए, जो बढ़ता जाए, वो सुख जिसमें कभी कोई रुकावट ना हो, वो सुख जो किसमें उसमें कोई कमी ना हो, वो सुख हर पल हर क्षण बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और बढ़ता जाए, और जिसमें रुकावट ना हो, इस प्रकार के सुख में हर कोई खोज में है। आनंदम प्रतिपदनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, वो सुख जो बढ़ता रहता है और वो सुख जिसमें कोई रुकावट नहीं है उसको आनंद कहते हैं। आनंद को प्राप्त करना हर जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है। हर एक जीव आत्मा जो है हम, हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम उस प्रकार का सुख प्राप्त करें, और हर कोई उस सुख कई प्राप्त करने के लिए हर कार्य करता है। एक छोटा बच्चा रोता है किस लिए, क्योंकि वो सुख चाहता है। कोई स्कूल जाता है किस लिए, क्योंकि वो सुख चाहता है। माँ आकर में अपना कार्य क्यों करती है, ताकि वो अपने परिवार को सुखी रखना चाहती है, खुद सुखी होना चाहती है। हम अपने कार्य क्यों करते हैं, कार्यालय में क्यों जाते हैं, हम अपना बिजनेस क्यों करते हैं, ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सुख चाहिए। सुख के पीछे हर कोई है। तो ये सुख को प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पर हमारा जो मांग है, हमारा जो अधिकार है, वो ऐसा सुख है जो बढ़ता जाए, जो बढ़ता जाए, जिसमें रुकावट नहीं है। जैसे कभी आप तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हो, तेल का एक धारा बनता है, वो सुंदर धारा बनता है, उस धारा में कोई रुकावट नहीं रहता है। उस प्रकार से हम भी सुख का, उस प्रकार का सुख प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें, जिसके धारा में कोई रुकावट ना हो। इस संसार में हम सुख प्राप्त करने का जब प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि उस सुख में थोड़ा के को प्राप्त करने के लिए अनेक कष्ट करना पड़ता है, फिर ये सुख मिलता है और वो सुख में भी दुख रहता है, फिर वापस दुख होता है। जैसे कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, तो खूब मेहनत करने के बाद महीने के अंत में पगार मिलता है, फिर थोड़ा वो फिल्म देखने जाता है, परिवार को घुमाने जाता है, थोड़ा सुख प्राप्त करता है, फिर वापस अगले महीने मेहनत करना पड़ता है। इस संसार के सुख जो है वो वास्तव में असली सुख नहीं है। इस संसार में जो सुख है वो असली सुख नहीं है, वो असली सुख हमें देता नहीं है, जो सुख हमें चाहिए वो देता नहीं है। दुख उसके अंदर है और थोड़ा सुख है, ये दुख और सुख का मिश्रण है। जैसे एक सैंडविच होता है, एक ब्रेड है, बीच में बटर है, फिर वापस एक ब्रेड है, तो दुख का एक ब्रेड है, फिर सुख का एक बटर है और दुख का फिर से ब्रेड। ये दुख सुख और दुख का मिश्रण हम इस संसार में देखते हैं, पर हमारा वो सुख कहाँ पे है ये हमें देखना चाहिए। ये सुख कहाँ पे मिल सकता है, ये सुख जो हम खोज रहे हैं वो सुख कहां पे मिल सकता है, ये हमें जिज्ञासा करना चाहिए। अतः ब्रह्म जिज्ञासा, खास करके ये मनुष्य शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें हमें भगवान ने बहुत सुंदर बुद्धि दिया है, ये बुद्धि इसलिए दिया है तो ये जिज्ञासा करने के लिए, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये बृहद जिज्ञासा करने के लिए कि ये परम सुख कहाँ मिलेगा, ये परम सुख मुझे कहाँ मिलेगा, या दूसरे शब्दों में मैं ये परम सुख का अनुभव क्यों कर रहा हूं, या मेरे जीवन में दुख क्यों आता है। ये दुख कोई चाहता नहीं है, ये दुख कोई चाहता नहीं है, फिर भी ये दुख हमारे जीवन में क्यों आता है। कोई भी कहता है कि हमें दुख चाहिए, है कोई जो कहता है कि हमें दुख चाहिए, नहीं, कोई नहीं कहता कि हमें दुख चाहिए। दुखी रहना ये हमारा स्वभाव नहीं है, फिर भी इस संसार में हम देखते हैं कि दुख आ जाता है, और इस संसार में दुख अनेक प्रकार के हैं। कहते हैं कि 7 प्रकार का दुख है, जन्म एक प्रकार का दुख है, मृत्यु एक प्रकार का दुख है, बुढ़ापा एक प्रकार का दुख है, जरा एक प्रकार का दुख है, और आध्यात्मिक हमारा खुद का शरीर दुख देता है, मन दुख देता है, आदि भौतिक और लोग हमें दुखी कराते हैं, या आदि दैविक कभी कभी बहुत दुख करता है, देवी देवताओं के द्वारा हमें दुख मिलता है, तो 7 प्रकार का दुख है, 7 प्रकार का दुख है। ये हमें दुख नहीं चाहिए, फिर भी ये दुख से कोई बच नहीं पाता है। इस दुख से बचने का कोई उपाय है तो ये उपाय है। जन्म भी एक दुख है, माँ के गर्भ में अगर कोई रहता है तो शिशु वो माँ के गर्भ में जब रहता है तो उल्टा लटकता रहता है और वो रोता रहता है, और माँ के गर्भ में जो टीका चटपटा जो भी जाता है उसके चमड़ी में लगता है वो बच्चा देता है, कीड़े उसे काटते हैं तो बच्चा देता है, कब मैं बाहर निकलता हूँ, वो दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस कष्ट भरी दशा से निकालो, मैं आपका भक्त बनूंगा, मैं आपका भक्त बनूंगा, और ऐसे कहते हुए वो माँ के गर्भ से रोते रोते निकलता है। इस संसार में बच्चा जब निकलता है माँ के गर्भ से कैसे निकलता है, रोते हुए निकलता है, कोई हंसते हुए निकलता है नहीं, रोते हुए निकलता है, क्योंकि बहुत सारा कष्ट का अनुभव होता है। तत्पश्चात वो जीता है तो उसे अनेक अनेक बीमारी आता है, क्या कोई बीमारी से बच सकता है, नहीं, किसी को सर दर्द, किसी को पेट का दर्द, किसी को पांव का दर्द, ये छोटा मोटा दर्द है तो कैंसर इत्यादि। कोई कहेगा कि मुझे थोड़ा सा दुख चाहिए, नहीं, कोई नहीं कहता है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। कोई नहीं कहता थोड़ा सा मुझे कैंसर दे दो, थोड़ा सा मलेरिया दे दो, है कोई ऐसा जो कहने वाला है यहाँ पे, बताइए, कोई कहेगा कि नहीं थोड़ा सा सर दर्द मुझे दे दो, थोड़ा सा पेट दर्द, नहीं, नहीं, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार से बीमारी एक प्रकार का कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा, फिर इसके बाद जो है बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है ये भी बहुत बड़ा कष्ट है। बुढ़ापा का अर्थ होता है कि हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और हमारा मन भी कमजोर हो जाता है। ये बुढ़ापा जो रहता है ये बुढ़ापा भी कोई नहीं चाहता है, क्योंकि जिस रफ्तार से हम अपने युवा अवस्था में हर कार्य कर देते, वो कार्य हम कर नहीं पाते हैं। हमारे आंखों के सामने हम देख सकते हैं कि हम कमजोर होते जा रहे हैं। ये दशा कोई देखना नहीं चाहता है, बुढ़ापा भी कोई नहीं देखता, क्योंकि चलना मुश्किल हो जाता है, हाँ खाना मुश्किल हो जाता है, देखना मुश्किल हो जाता है, कान से सुनना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार का दशा कोई नहीं चाहता है। इसीलिए बुढ़ापा से बचने के लिए क्या क्या नहीं लोग करते हैं, हम देख सकते हैं। संसार में मेडिकल स्टोर में जाओ, बुढ़ापा से बचने के लिए अलग अलग प्रकार के क्रीम मिलते हैं। आप शहरों में जाओ, बालों को सफेद होने से बचने के लिए अलग अलग प्रकार के क्रीम, कानों का सुनाई बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के यंत्र है, और आंखों से अच्छा देखने के लिए अलग अलग प्रकार के लेंस इत्यादि मिलते हैं। दांत गए हैं तो आपको अलग अलग दांत मिल जाता है। पर इस प्रकार से बुढ़ापा, मृत्यु से हर कोई डरता है, भयभीत है, कोई नहीं चाहता है। हम सब चाहते हैं कि हम सदैव जीता रहे, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। सच्चित और आनंद, सत का अर्थ होता है शाश्वत, हम शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, चित ज्ञान से भरपूर है और आनंदमयी है। इसीलिए मृत्यु जब आता है तो मृत्यु हम नहीं चाहते हैं, चाहे चींटी हो, उसे चींटी को हम अपने अंगूठे से उसके ऊपर मारने जाए या उसे दबाने का प्रयास करो, चींटी दौड़ लगा के भागता है। क्यों? क्योंकि वो पता है इससे मेरा मृत्यु हो सकता है, और मृत्यु से वो भयभीत है। मृत्यु कोई नहीं चाहता। शास्त्र में, गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है, मृत्यु का समय ऐसा है कि 40,000 बिच्छू जब व्यक्ति को टप मारता है तो जो दर्द होता है उस दर्द का अनुभव मृत्यु का समय होता है। 40,000 बिच्छू एक साथ एक समय पर डंक मारे। आपने कभी बिच्छू का डंक का अनुभव किया होगा या नहीं किया होगा, या जिसको डंक मारा है उसका दशा देखा होगा, उसका जीना मुश्किल हो जाता है और मरना भी मुश्किल हो जाता है। वो जागते हुए दर्द का अनुभव करता है और उसका दर्द के कारण उसका नींद हराम हो जाता है, ना तो अच्छी तरह से जाग पाता है, ना तो वो सो पाता है। इस प्रकार से तड़पता रहता है, रोज 10-15 दिन तड़पता रहता है। पर वो एक बिच्छू का डंक इस प्रकार से 40,000 बिच्छू का डंक का दर्द क्या होगा? क्योंकि मृत्यु एक ऐसा समय है जब व्यक्ति को पता लगता है आज तक मैंने जो कुछ भी कमाया है और मेरे अच्छे सगे संबंधी दोस्त मित्र है, उन सब को मैं आज एक साथ छोड़ने वाला हूं। ये नहीं देखा जा सकता है। जैसे हम कहीं चल के जाते हैं तो हम देखते हैं, ट्रेन में बैठे हैं तो हमारा पॉकेट कोई मार लेता है, हमारा 100 रुपया 1,000 रुपया चला जाता है तो दर्द होता है। पर एक साथ एक समय हमने जो करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, 1,000 रुपया जो कमाए वो सब चला जाने वाला है, तो ये दर्द हमसे नहीं सहा जाएगा। तो ये मृत्यु से सब भी कोई नहीं चाहते हैं, ये भी एक प्रकार का कष्ट है। ये मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, जातक से ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार से भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये आध्यात्मिक का अर्थ होता है हमारा ही शरीर दर्द देता है। हम अगर ज्यादा खाते हैं तो पेट दर्द करता है, हम ज्यादा मिठाई खाते हैं तो दांत दर्द करता है, हमारा शरीर हमें कष्ट देता है ना। इसीलिए इतने सारे अस्पताल और इतने सारे दवाई और दवाई के दुकान शरीर के दर्द, और आज इस शरीर के दर्द के ऊपर उससे बढ़कर इस 21st century का 21वीं पीढ़ी का जो नया बीमारी है वो शरीर का बीमारी नहीं, वो मन का बीमारी है। ये मन का बीमारी शरीर के बीमारी से भी भयंकर है। दुख, आज कहते हैं कि सबसे अच्छा बिजनेस जो है, सबसे अच्छा धन कमाने का व्यवसाय जो है डॉक्टरों का, वो भी डॉक्टरों में जो मन का इलाज करता है, ऐसे डॉक्टर जिन्हें साइकेट्रिस्ट या साइकेट्रिस्ट कहते हैं। ये साइकेट्रिस्ट जो है वो मन का बीमारी दूर करता है, और कहते हैं कि एक साइकेट्रिस्ट जो है अमेरिका जैसे देशों में साइकेट्रिस्ट जो है बहुत पैसे कमाते हैं, तो साइकेट्रिस्ट के पास अनेक अनेक लोग लाइन में खड़े रहते हैं, वो दुखी लोगों का दुख सुनता रहता है, उनके मन का दर्द सुनता रहता है और ये साइकेट्रिस्ट इतना इतना दुख सुन लेता है कि वो खुद दुखी हो जाता है और दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाता है अपना इलाज करने। तो इस प्रकार से ये दुख, मन का दुख जो है आज सबसे बड़ा बीमारी है, तन के दुख से भी ज्यादा मन का दुख है। ये मन का दुख जो है बहुत ही खराब। मन का दुख क्या है? जैसे कोई हमसे अच्छा कर लेता है तो हम सोचते हैं भले उसका कमीज हमारे कमीज से सफेद कैसे, तो मन का दुख है। उनके घर पे इतना अच्छा टेलीविजन कैसे, तो मन का दुख। हम जब संतुष्ट नहीं रहते हैं तो मन का दुख आता है। जैसे मन का दुख का अर्थ होता है कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है तो मन दुखी हो जाता है, या जो हम नहीं चाहते हैं वो हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मन का दुख और तन का दुख और आध्यात्मिक दुख, ये कोई बच नहीं सकता, हर कोई इसका अनुभव करता है। इसके बाद आदि भौतिक, ये छठा प्रकार का क्लेश है। छठा प्रकार का क्लेश जो है आदि भौतिक। आदि भौतिक का अर्थ होता है कि दूसरे लोग हमें कष्ट देते हैं, दूसरे जीव हमें कष्ट देते हैं। जैसे जैसे हमारे हमारे दुश्मन हमें कष्ट देते हैं, जैसे कोई हमारा मजाक उड़ाता है दूसरे लोग हमें कष्ट देते हैं, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मच्छर या चींटी हमें काट देता है, तो ये भी कष्ट है। ये तो शरीर के बाद, फिर शरीर के अंदर छोटे छोटे जंतु होते हैं वो भी हमें कष्ट देता है, तो बीमारी आ जाता है। तो ये दूसरे जीवों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा जो कष्ट है, कभी कभी सगे संबंधी हमें कष्ट देते हैं, कभी कभी दोस्त हमें कष्ट देते हैं, कभी कभी बाजू वाला कष्ट देता है, कभी दुश्मन हमें कष्ट देता है। तो ये कष्ट दूसरे जीवों के द्वारा, उसे आदि भौतिक कहते हैं। और इसके बाद सातवां प्रकार का क्लेश, जो अंतिम क्लेश है जिसका अनुभव संसार में हम करते हैं, तो वो आदि देविक, देवी देवताओं के द्वारा जो क्लेश मिलता है। जैसे दोपहर के समय बहुत धूप हो जाना, हम नहीं चाहते कि इतना धूप हो, पसीना से तर-तर हो जाते हैं, हम अंदर नहीं जा सकते हैं, रह सकते हैं ना बाहर घूम सकते हैं, ऐसा हालत हो जाता है। या खूब वर्षा हो जाता है, अतिवृष्टि या अनवृष्टि या वर्षा का ना होना, ऐसा भी जब हो जाता है, ये सब देवी देवताओं के द्वारा। या भूकंप का आना, अकाल, इस प्रकार से देवी देवताओं के द्वारा, या खूब ठंड आ जाना, ये देवी देवताओं के द्वारा क्लेश मिलता है। इस सात प्रकार के क्लेश से कोई बच नहीं सकता है, पर इन सात प्रकार के क्लेशों की संसार में जो भी आता है, सात प्रकार के क्लेशों का अनुभव करता है। पर इस संसार में रहते हुए क्या हम सुखी रह सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसका एक तरीका है और वो तरीका हमें जानना चाहिए। हम सब सुख के खोज में हैं, पर हम जो सुख का खोज जो है हमारा, वो जो सुख का खोज है हमारा, वो ऐसा है जैसे एक व्यक्ति एक बार मार्केट गया था, तो मार्केट के सब्जी मंडी में गया था, तो अनेक अनेक सब्जी खरीद लिए और अनेक अनेक दुकान पर थे, तो वो अपने देखा कि एक दुकान था, उसमें कुछ अद्भुत लिखा था, उसमें लिखा था, गर्मी का समय था तो वहां पे लिखा था मैंगो मिल्क शेक। आप समझते हैं ना मैंगो मिल्क शेक, समझते हैं मैंगो मिल्क शेक क्या होता है? हाँ या ना, जानते हैं मैंगो मिल्क शेक क्या है, जानते हैं? तो ये मैंगो मिल्क शेक लिखा था, मैंगो मिल्क शेक 25 पैसे के लिए। 25 पैसे के लिए क्या मैंगो मिल्क शेक मिल सकता है? और उसमें लिखा था 25 पैसे के लिए मैंगो मिल्क शेक, जितना चाहिए उतना मैंगो मिल्क शेक। समझ रहे हैं ना, 25 पैसे के लिए जितना चाहिए उतना मैंगो मिल्क शेक। व्यक्ति वहां जाके देखने लगा तो बोले मैंगो मिल्कशेक, तो तुरंत मोबाइल लिया, फोन किया, बोला कि घर में अड़ोस पड़ोस दोस्त सगे संबंधी सबको बुलाओ, आज हम लोग एक बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं, बहुत बड़ा पार्टी रखते हैं, सबको बुलाएंगे और खूब उनको मैंगो मिल्कशेक खिलाएंगे। ये दुकान में 25 पैसे के लिए जितना चाहिए उतना मैंगो मिल्कशेक। तो मैंगो मिल्कशेक तो मिला तो 25 पैसे आगे कर दिया और दुकानदार को कहा ये लीजिए आपका मैंगो मिल्क 25 पैसा और दीजिए मुझे मैंगो मिल्कशेक, मुझे चाहिए मैंगो मिल्कशेक 40 लीटर मैंगो मिल्कशेक। तो वो व्यक्ति रुका, दुकानदार वहीं पे बैठा हुआ था और आम को लिया और दिखाया उसके सामने रख दिया। तो ये व्यक्ति सोचा वो दुकानदार मुझे बता रहा है कि किस प्रकार से कितना अच्छा आम के द्वारा इस मैंगो मिल्कशेक बनाया जाएगा, वो मुझे बता रहा है सैंपल। 5 मिनट बीत गया, 10 मिनट बीत गया, 15 मिनट बीतने के बाद कहा कि क्या है, कहाँ है मेरा ये मैंगो मिल्कशेक। तो व्यक्ति ने, तो दुकानदार ने कहा आपको चाहिए मैंगो मिल्कशेक 25 पैसे में, तो ये लीजिए मैंगो और अपने हाथ में लीजिए और जितना चाहिए उतना मैंगो मिल्कशेक, अपने हाथ से इस मैंगो को हिलाइए, जितना चाहिए उतना मैंगो मिल्कशेक। तो ये मैंगो मिल्कशेक का, तो वो व्यक्ति ने कहा मेरे साथ धोखा हो गया, बोला आप यहाँ पे लिखे हो कि 25 पैसे में जितना चाहिए उतना मैंगो मिल्कशेक और मैंने कहा मुझे 40 लीटर मैंगो मिल्कशेक चाहिए 25 पैसा दो दीजिए मुझे, तो कहा दुकानदार ने आप 25 पैसे में, आप 25 पैसे में, आप 25 पैसे में क्या 40 लीटर मैंगो मिल्कशेक लोगे, अरे एक ग्लास मैंगो मिल्कशेक लेंगे तो 20 रुपया देना पड़ेगा, हाँ 4 ग्लास लोगे तो 1 लीटर होगा तो 80 रुपये 1 लीटर, यानी कि 40 लीटर अगर आपको चाहिए तो लगभग आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा, तब जाके आपको 40 लीटर मिलेगा, पर 25 पैसे के लिए आपको मैंगो भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एक मैंगो और इस मैंगो को पकड़िए और हिलाइए, जितना आपको आज चाहिए उतना हिलाइए, हिलाने के बाद इस मैंगो को वापस रखिए और जाइए। यह है मैंगो मिल्कशेक 25 पैसे में, जितना चाहिए उतना मैंगो मिल्कशेक। कहने का तात्पर्य है यह है कि हम लोग इस संसार में सुख की खोज में है और हम देखते हैं एक बिलबोर्ड, हम देखते हैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कि ये पिक्चर देखिए, ये दुकान में जाइए, ये साइकिल खरीदिए, ये फ्रिज खरीदिए, यहाँ पे मकान खरीदिए, ये सब देखकर हम सोचते हैं कि ये पिक्चर देखने से मुझे वो सुख मिलेगा, तो हम 25 रुपया देते हैं, 100 रुपया देते हैं और सोचते हैं कि ये पिक्चर देखने के बाद मुझे वो सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा, जो बढ़ता जाएगा। पर वहां जाने के बाद हम देखते हैं अरे मैंने तो धोखा खाया, ये फिल्म देखकर मैं सोचा कि मैं परम सुख का अनुभव करूंगा, पर ये परम सुख का मैं अनुभव कर नहीं पा रहा हूं। ये क्लब में जाने से या हम सोचते हैं कि या इस मकान को खरीदने से या इस बाइक को खरीदने से या एक कपड़े खरीदने से हम परम सुख का अनुभव करेंगे, पर बाद में हम देखते हैं कि ये सब होता नहीं है। क्या वो सुख जिसकी खोज में है वो सुख संसार में है, वो ये सुख क्या इस संसार में हमें मिल सकता है, वो सुख इस संसार में हमें मिल सकता है पर वो सुख ये संसार हमें नहीं दे सकता है, वो सुख हमें कैसे प्राप्त होगा, कैसे वो सुख हमें तब मिलेगा जब हम उस स्थान पे जाएंगे, उस व्यक्ति से मिलेंगे जो ये सुख का स्रोत है। इस संसार में भगवान एक व्यक्ति है जो सबका स्रोत है, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो भक्त सर्वप्रभवते, मुझसे ही सब कुछ आता है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, भूमि अपान और वायु खम मन बुद्धि ये बच्चा अहंकार वृत्ति यम में भिन्न प्रकृति अस्तदा, तो जो कुछ भी इस संसार में है दिखाई पड़ता है वो सब भगवान से आता है, भगवान से सब कुछ आता है, तो यही भगवान से सुख भी आता है, यही भगवान से सुख भी आता है। तो जब तक हम उस भगवान के साथ अपना संबंध को नहीं जोड़ते हैं, हम उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान के साथ जब हम संबंध जोड़ेंगे तब हम ये सुख को प्राप्त करेंगे। इस संसार में जैसे हम सुख यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढते हैं तो हम धोखा का अनुभव करते हैं, और इस प्रकार से धोखा खा खा के हम सोचते हैं कि संसार में सुख है ही नहीं। हाँ, सुख थोड़ा सा है, फिर दुख बहुत सा है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि दुख तो इस संसार में है और दुख का अनुभव करेंगे, और दुख का अनुभव करना बहुत जरूरी है। नहीं, ये गलत है, ये दुख का अनुभव करने की आवश्यकता है ही नहीं। वो कहते हैं कि जब तक हम दुख का अनुभव नहीं करेंगे, ये दुख संसार में भगवान ने इसलिए रखा कि जब हम दुख का अनुभव करेंगे तब हमें पता लगेगा सुख नाम का चीज क्या है। नहीं, दुख का हमें अनुभव करने की आवश्यकता है ही नहीं, हमें दुख क्या नहीं, क्योंकि दुखी होना ये हमारा स्वभाव है नहीं, दुखी होना हमारा स्वभाव है नहीं। तो इस संसार में हम सुख की खोज में जाते हैं। जिस प्रकार से एक हिरण रेगिस्तान में जब रहता है तो वो प्यास का अनुभव करता है, तो हिरण दूर देखता है, मृग जो होता है देखता है कि वहां पे पानी है, पर वास्तव में उस रेगिस्तान में कोई पानी नहीं है, वो सूर्य के किरण का एक प्रतिबिंब होता है जो पानी जैसा दिखाई पड़ता है, और वो हिरण सोचता है कि यही पानी है जो मैं कभी पहले पीकर प्यास को बुझाया था, तो यही पानी अब मेरा प्यास बुझाएगा। और उस पानी को प्राप्त करने के लिए वो हिरण वो मृग जो है दौड़ने लग जाता है। ये मृग जब दौड़ने लग जाता है तो दौड़ते दौड़ते पसीना छूटता है और वो थकने लग जाता है, थकान का अनुभव करता है, और थकान का अनुभव करते करते वो कमजोर होने लग जाता है। पर देखता है कि अब तक पानी क्यों नहीं आया, नजर आगे डालता है तो देखता है पानी आगे चला गया, तो और दौड़ लगाने लग जाता है। इस प्रकार से ये मृग जो है उस पानी के पीछे पीछे चलता है, उसे पानी मिलता नहीं, इसे मृग तृष्णा कहते हैं। और हिरण मृग दौड़ते 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 पूरा दौड़ने के बाद पसीना और कमजोरी से आ जाता है, और इस पसीना और कमजोरी छूटने से शरीर कमजोर हो जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त करता है, पर वो पानी उसे प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से सांसारिक व्यक्ति संसार में रहते हुए सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। बच्चा ये सोचता है कि अब मैं छोटा सा हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं सुख का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन मैं चलने फिरने लग जाऊंगा सुख का अनुभव करूंगा। तो बच्चा चलने फिरने जब लग जाता है तब सोचता है कि अरे अब मैं चल फिर रहा हूँ, सुख का अनुभव क्यों नहीं कर रहा हूँ, जब मैं स्कूल जाने लगूंगा तब मैं सुख का अनुभव करूंगा। तब वो स्कूल जाता है आधा छड्डी और शर्ट पहनकर यूनिफॉर्म पहनकर, तो देखता है कि अरे मैं सुख का अनुभव क्यों नहीं कर रहा हूँ, फिर देखता है कि वो सुख तो वहां पे है, वो जिस प्रकार से तृष्णा मृग तृष्णा को देख रहा था उस प्रकार से वो सुख तो वहां पे है। तो सोचता है कि जब मैं इस पेंसिल को छोड़कर इंक पेन से लिखने लगूंगा तो सुख मिलेगा, तब देखता है कि अरे इंक पेन से अपने लिख रहा हूँ पर सुख कहाँ है, तब बोलेगा कि मैं आधा चड्डी पहन रहा हूँ इसलिए सुख नहीं मिल रहा है, फुल पैंट पहन के यूनिफॉर्म पहनूंगा तब मुझे सुख मिलेगा, मैं 10वीं कक्षा जाऊंगा, 9वीं कक्षा में जाऊंगा, सीनियर स्कूल में जाऊंगा तब सुख मिलेगा। तब सीनियर स्कूल में आने के बाद देखता है अरे सुख कहाँ है, तब सोचेगा अरे कॉलेज में जाने से सुख मिलेगा। जब कॉलेज में जाता है तो सोचता है कि अरे ये सुख कहाँ गया है, तो बोलता है अरे आगे सुख है, तो देखता है कि जूनियर कॉलेज से सीनियर कॉलेज जाऊंगा तब मुझे सुख मिलेगा। तब वो देखता है कि अरे सीनियर कॉलेज तो आ गया, कब मिलेगा सुख, तो सोचता है कि अरे नौकरी करने लगूंगा और नौकरी से पगार मिलेगा, बाइक लूंगा, मैं अपना घर बनाऊंगा तब सुख मिलेगा। अरे तो नौकरी लग गया है, अब सुख कहाँ गया है, तो बोलेगा अरे नौकरी लग गया, बाइक आ गया, मकान खरीद लिया, सुख कहाँ है, शादी करूंगा तो मैं सुखी होऊंगा। तब वो शादी भी कर लेता है, अब देखता है शादी हो गया है, परिवार हो चुका है, अब सुख कहाँ पे, जब बच्चे हो जाएंगे तब सुखी होने लगा, तब बच्चे भी आ गए हैं, अब सुख कहाँ है, अरे बच्चे बड़े हो जाएंगे जब उनका शादी हो जाएगा, और बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनका शादी हो जाएंगे, पोत पोत पोता और पोती के साथ खेलूंगा तब सुख मिलेगा, तब देखते हैं कि पोता पोती हो गया, अब सुख कहाँ पे। इस प्रकार से सुख के पीछे 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 जाते जाते हम देखते हैं कि जीवन बीत गया है, सुख का खोज तो रहा है पर सुख नहीं मिला। जिस प्रकार से हिरण उस रेगिस्तान में पानी के खोज में दौड़ रही है, इस प्रकार से वो खोजते खोजते पसीना और कमजोरी के कारण मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से जीवन में हम सुख के खोज में एक सुख से एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाते हैं पर हमें सुख मिलता नहीं है। तो ये सुख जो है हमें कहाँ पे प्राप्त होगा? पानी है और वो हिरण को पता है पानी है, और पानी ही मुझे प्यास को बुझा सकती है, पर ये पानी इस रेगिस्तान में नहीं, रेगिस्तान के पार वो जो जो पानी का हुआ है वहां पे हमें पानी मिलेगा। इसी प्रकार से संसार में पानी सुख नहीं है, इस संसार में जो भगवान है भगवान के पास ये सुख है। भगवान हर चीज के स्रोत हैं, भगवान सुख के भी स्रोत हैं। तो इसलिए हमें भगवान के पास जाना चाहिए, जो भगवान दया दयालु है, दीन बंधु है, जो सबका दुख को दूर करता है, सबका क्लेश को दूर करता है, ऐसे भगवान को पास हमें जाना चाहिए। ऐसे भगवान का नाम हमने सुना, हाँ ऐसे भगवान कहाँ पर रहते हमने सुना, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे भगवान के पास हमें जाना चाहिए। जो भगवान के पास जाने के बाद कुंती महारानी अपने एक प्रार्थना में गाती है, जब कृष्ण द्वारका से वापस जब कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जब वापस आते हैं तो कुंती महारानी कहते हैं, हे कृष्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका है, आपने हमें बड़ा राज्य दे दिया है, अब आप हमें छोड़ के जा रहे हो। कहते हैं कि आप छोड़ के जा रहे हो यही सबसे बड़ा दुख है, आप है तो सबसे बड़ा सुख है, आप नहीं है तो सबसे बड़ा दुख है। आप कहते हैं कि भवत दर्शनम विपद अदर्शनम, आपका जब दर्शन होगा तो विपद दुख क्लेश कष्ट का दर्शन नहीं होगा। भवत दर्शनम विपद अदर्शनम, जब भगवान का दर्शन होगा तो इस संसार में दुख का दर्शन नहीं होगा। अगर भगवान का दर्शन नहीं होगा तो तुरंत दुख का दर्शन होगा। जब हम भगवान को देखते नहीं है संसार में, तुरंत दुख को देखते हैं। इसीलिए एक कहावत एक लेख में आता है चेतन चरितामृत नामक एक सुंदर ग्रंथ में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक भगवान के बड़े भक्त हुए, वो लिखते हैं कि हम लिखते हैं कि कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण होए वहां माया नहीं अधिकार। कृष्ण जो भगवान है वो सूर्य के समान है, सूर्य के समान है। जैसे सूर्य के सामने हम कोई अंधकार को नहीं देख सकते हैं, सूर्य के सामने कोई अंधकार को नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, पर सूर्य जब नहीं रहेगा तो ही अंधकार दिखाएगा। उसी प्रकार से कृष्ण के सामने कोई दुख नहीं है। कृष्ण संसार में वो सुख के भंडार है, आनंद के भंडार है, आनंद में भ्यासा वो आनंद के भंडार है, रसो वैश्वा वो आनंद के भंडार है, कृष्ण जो है आनंद के भंडार है। तो दुख नाम का चीज कृष्ण अनुभव ही नहीं कर सकते हैं, दुख नाम का चीज कृष्ण अनुभव ही नहीं कर सकते। और जो कृष्ण के भक्त हैं, जो कृष्ण का दर्शन करते हैं, वो भी दुख का अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। वो इसी प्रकार से, पर जब कृष्ण को हम नहीं देखते हैं तो हम जब सूर्य को हम नहीं देखते हैं तो हम तुरंत अंधकार को देखते हैं। सूर्य नहीं है तो अंधकार है, सूर्य नहीं तो कृष्ण नहीं है तो दुख ही दुख है। तो कहते हैं कि तो कृष्ण सूर्य समान माया है अंधकार, यहां कृष्ण माया अंधकार। माया जो है दुख देता है, तो कृष्ण जहां पे नहीं है वहां पे दुख होता है। तो इसलिए भगवान का दर्शन करने से दुख का दर्शन नहीं होता है। हम सबको भगवान का शरण लेना चाहिए। इस संसार में शरण लेने वाले अनेक हैं, जो हमें शरण देने वाले अनेक हैं, पर शास्त्र में वर्णन आता है कृष्ण ये एकमात्र हमें ऐसा शरण देता है कि वैसा शरण देता है जिस शरण में हम पूरी तरह से सुरक्षा का अनुभव करेंगे और ऐसा शरण में हम दुख और क्लेश का अनुभव नहीं कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज का नाम आप सबने सुना होगा। वो ऐसे भक्त हैं जो कि माँ के गर्भ में नारद मुनि के उपदेशों के श्रवण किए। कयाधि उनके माँ का नाम था। वो माँ के गर्भ में वो सुना था और जो शिक्षा माँ के गर्भ में सुना था वो जीवन भर उसका स्मरण किया था और भगवान का भक्ति माँ के गर्भ से अंत समय में हर समय कर रहा था। आप सब जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु उनके पिता उन्हें मारने का खूब प्रयास किया, भगवान उनका रक्षा किया। और एक बार उनके पिता ने कहा, क्या इस कमरे में आपका भगवान है और वो भगवान आप क्या आपको बचा सकता है मेरे इस तलवार के वार से? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, इस खंभे में भगवान है। और तब हिरण्यकश्यपु ने सोचा, इस खंभे में अगर भगवान है, इस खंभे को मैं मार डालूंगा, इस खंभे को चूर चूर कर लूंगा, तो इस खंभे के अंदर जो भगवान है वो भी चूर चूर हो जाएगा। जैसे एक डिब्बे के अंदर एक चींटी को रखो, डिब्बे को अब तोड़ दो तो चींटी भी मर जाएगा। ये उनका बुद्धि था। पर वो नहीं जानता है कि भगवान का शरीर हमारे शरीर जैसे नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चिद और आनंद का विग्रह है, स्वरूप है, आनंद के विग्रह है, ज्ञान के विग्रह है, चिन्मय विग्रह है, वो सत का विग्रह है, सच्चिद आनंद विग्रह है। वो तलवार से अग्नि से कट नहीं सकता है, ऐसा विग्रह है, वो आनंद के भंडार है। तब जैसे ही उन्होंने इस खंभे को मारा तो खंभे को फाड़ कर भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए और थोड़ी देर में हिरण्यकश्यपु को मार दिया। हिरण्यकश्यपु को मार दिया तब प्रहलाद महाराज से नरसिंह देव भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप कुछ मांगिए। तब प्रहलाद महाराज कुछ मांगे नहीं। प्रहलाद महाराज ने कहा अपनी प्रार्थना में कि आपका शरण चाहिए, आपका शरण मुझे चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस संसार में हम सोच सकते हैं, कोई बच्चा सोच सकता है कि मैं अपने माता पिता के साथ हूँ तो मेरे माता पिता मुझे बचा सकता है, या हम सोच सकते हैं कि अरे मेरे पास पैसा है, बीमारी आएगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और दवाई खरीदूंगा और शरीर को ठीक रखूंगा, या कोई नौके में बेटा है सोचता है कि इतने बड़े नौका है, मैं इस नौके में जाऊंगा तो इस नौका से मेरे इस नदी से या सागर को पार कराएगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये सब में से कोई भी इस संसार में हमें शरण नहीं दे सकता है, असली शरण तो भगवान ही दे सकता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज अपने इस प्रार्थना में कहते हैं कि बाल स्नेह शरणम पितरो नरसिंहा नातस्य चातम उदबन्ति मजंतना तत्तस्य तत् प्रतिविदिर्या इहा जसेतास्तावत् विभूतनुवृतं तावत् उपेक्षितानां। कहते कि बालस्य नेह शरणम पितरो, कहते कि जब बच्चा जो है ये सोचता है कि अब मैं मेरा माता पिता के साथ हूँ, मैं पूरी तरह से, या माता पिता सोचते हैं कि अब जब तक हम हैं हमारा बच्चा सुरक्षित है। पर देखा जाता है कभी कभी माता पिता के होते होते बच्चा का मृत्यु हो जाता है। कुछ दिन पहले हम मायापुर धाम में थे, हमने खबर सुना कि एक छोटा सा बच्चा, एक परिवार, छोटा सा परिवार, माता पिता और बच्चा गंगा में जा रहे थे नौका में बैठकर। तो ये बच्चा जो था बहुत ही खुश था, नौके में बैठते बैठते गंगा में अपने हाथ को ऐसे मार रहा था नौके में बैठ के। तो जो नाविक था वो कहा, जी ऐसे मत करो, नाविक था कि ऐसे खेलो मत, इस बच्चे को आगे मत। तो बच्चा खेल रहा था, उनके बात को सुना नहीं। तो वो बच्चा खेल रहा था तो थोड़ी देर में एक मगरमच्छ आया पानी के अंदर से, खच करके उस बच्चे के हाथ को पकड़ लिया। वो बच्चा रोने लगा, अपने माता और पिता की ओर देखने लगा, मेरे माता है, मेरे पिता है, वो मुझे बचाएंगे। पर देखा कि मगरमच्छ ने उसके हाथ को कस के पकड़ लिया। तब वो नाविक ने कहा, अरे अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये लो चाकू, अगर इस बच्चे को आप जिंदा देखना चाहते हो तो ये तलवार हथियार लो और इस बच्चे का हाथ काटो। माता पिता सोचने लगे, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे प्यारे बच्चे के हाथ को नहीं काट सकते। अगर आप इस बच्चे का हाथ नहीं काटोगे तो ये बच्चा को जिंदा नहीं मिलेगा, ये मगरमच्छ को ये हाथ दे दो और ये बच्चा तो मिलेगा कम से कम। तो माता पिता उस हथियार को उठाया, पर हथियार उठाने चलाने में उनको देरी हुआ तो बच्चा रो रहा था, माँ पिता, और माँ को बुला रहा था, पिताजी को बुला रहा था, पर माता पिता की हिम्मत नहीं हुआ। फिर वो नाविक ने कहा, आप इस बच्चे के पास मत जाइए, आप बचा नहीं पाओगे। थोड़ी देर में वो मगरमच्छ उसका हाथ तो हाथ उस बच्चे को भी खींच के बाहर ले लिया। वो बच्चा अपने माँ और पिता को देख रहा था, माता पिता अपने बच्चे को देख रहा था। थोड़ी देर में मगरमच्छ उस बच्चे को पानी में लिया और माता और पिता केवल खून का लहर देखने लगे इस गंगा के इस पानी में। माता पिता कहते हुए बच्चा का मृत्यु, माता पिता उस बच्चे को शरण दे नहीं पाए। हम सोच रहे हैं कि हम जिसका शरण लिए हैं वो हमें पूरा पूरा शरण देगा, या हम जिसको शरण दे रहे हम उसे पूरा पूरा शरण देगा, ये हमारा सोचना। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ठीक नहीं है, कहते हैं कि दवाई से, डॉक्टरों के पास जाने से हम बड़े बड़े बीमारी से बच जाएंगे। तो हाल ही में खबर हमने सुना, पुणे शहर का जो सबसे उत्तम कोटि का हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो इतना अच्छा हार्ट स्पेशलिस्ट है कि उसके परिवार के सदस्य सारे हार्ट स्पेशलिस्ट, उनके परिवार, उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके पिता, उनके ससुर सब स्पेशलिस्ट है। ऐसे हार्ट स्पेशलिस्ट थे वो कि जो भी केस आता तो वो कुछ ही मिनटों में वो हार्ट का ऑपरेशन अच्छी तरह से कर लेता। प्रातः काल के समय इसके हृदय में धक धक हुआ और देखा कि उसको हार्ट अटैक हुआ। तो जो हार्ट स्पेशलिस्ट सबका हार्ट डिजीज, सबका हृदय का रोग दूर कर रहा था, उसको खुद हृदय का रोग पड़ा और उसके ही ससुर, उसके ही परिवार के सदस्य जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे उसका हार्ट ऑपरेशन करने लगे। पर सब कुछ अच्छा होने के बाद भी सबसे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर उनके परिवार में होते हुए भी वो हार्ट स्पेशलिस्ट जो सबका हार्ट का ऑपरेशन अच्छी तरह से कर रहा था और उनके परिवार के सदस्य उनका हार्ट का ऑपरेशन अच्छी तरह से कर रहा था, वो खुद हार्ट अटैक से मर गए। दवाई, ऑपरेशन, डॉक्टर कुछ काम नहीं आया। ऐसे कितने केस हम सुनते हैं। दवाई और डॉक्टर का शरण, या डॉक्टर और दवाई ये सोचे कि हम सबको शरण दे सकते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं ये ठीक नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इतने बड़े नाव में बैठे हुए हैं और ये नाव हमें इस सागर को, इस नदी को पार करा सकता है। इतिहास में एक बहुत बड़ा जहाज का नाम आता है, टाइटैनिक। टाइटैनिक नाम आप सबने सुना होगा। टाइटैनिक एक ऐसा नाव है जिसे बनाने में बहुत समय लगा और ये नाव जब बन गया, ये घोषित किया गया था विश्व का ये सबसे बड़ा नाव है और इस नाव के अंदर ऐसा ऐसा यंत्र है कि आने वाला जो भी खतरा है उसे हम तुरंत जांच लेंगे और उस खतरे से बचने का तरीका भी इसके अंदर है। और उस नाव के जो पहला उनका जर्नी था, पहला सफर था, उस पहले नाव के सफर में देश के विदेश के वो सबसे बड़े व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति उपस्थित थे और सब यही सोच रहे थे इस नाव में अगर बैठ गए तो डूबने का कोई खतरा नहीं है। और खुद जैसे ये नाव टाइटैनिक चलने लगा तो वो देखा कि सामने से एक छोटा सा बर्फ आ रहा है। वो बर्फ तो छोटा सा लग रहा था, पानी के ऊपर छोटा सा लग रहा था, पर पानी के अंदर जो था वो एक पहाड़ रूपी था। बाहर हो गई और तब वो नाम सोचा कि मैं थोड़ा सा साइड से चला जाऊंगा, पर बर्फ जैसे ही सामने आ गया तो नीचे वाला हिस्सा उस बर्फ के से टकराया और पूरा का पूरा जहाज पानी में डूब गया। और वहां सब लोग हैरान हो गए कि कैसे हो सकता है, इन्होंने तो घोषित कर दिया कि ये नाव हर प्रकार के खतरे से हमें बचाएगा। तो बड़े समय से नाव में बैठने के बाद भी, उसका शरण ग्रहण करने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते गारंटी के साथ, वो गारंटी दे रहा था कि कोई डूबेगा नहीं, सबके सब डूब गए। तो इस संसार में गारंटी के साथ कोई शरण नहीं देख सकता है, या इस संसार में हम अगर सोचेंगे कि गारंटी के साथ हम इनका शरण लेंगे या इनको शरण देंगे, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं, हे कृष्ण आप एक ही ऐसे व्यक्ति हो कि हमें आप पूरी तरह से शरण दे सकते हो। और इसका 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 प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है पांच पांडव या प्रहलाद महाराज स्वयं अनेक अनेक कष्ट उनके जीवन में आए, अनेक अनेक खतरे उनके जीवन में आए, पर हर खतरों से हर कष्ट से भगवान ने उन्हें बचाया। यह भगवान, यह भगवान। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुंती महारानी कहते हैं, भक्तजन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जहां पे हम भगवान को देखते हैं वहां हम दुख नहीं देखेंगे, और जहां हम भगवान को नहीं देखेंगे वहीं पे हम दुख देखेंगे। इस संसार में हम हर वस्तु को भोगने का प्रयास करते हैं, भगवान से अलग रहकर, भगवान को दूर रहकर भोगने का प्रयास करते हैं, यही दुख का कारण है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि यही संस्पर्श च भोगा, यही संस्पर्श च भोगा दुख योनि एव ते आदि अंतमंत कौन्तेया नाति रमते बुदा, नाति रमते बुदा। कहते हैं कि यही संस्पर्श जब भोगा, कहते हैं कि जब भोग करने का प्रयास करता है आंख, जब सुंदर मुख को देखना चाहता है कान, मधुर ध्वनि को सुनना चाहता है जीवा, चटपटा स्वादिष्ट व्यंजन को आस्वादन करना चाहता है, ये स्पर्श इंद्रिया बहुत अच्छी चीजों को स्पर्श करने का प्रयास करता है, कोमल मखमल चीजों को स्पर्श करने का इच्छा रखता है, या नासिका से हम अच्छे सुगंध सुनने जाते हैं, कहते हैं कि यही संस्पर्श जब होगा, यही जो जब इंद्र वस्तु को का मिलन होता है, ये दुख का कारण होता है। क्या है? दुख का आरंभ होता है, दुख का योनि, दुख का बीज आ जाता है, और यही आगे जाके दुख प्रदान करता है, यही संस्पर्श जब होगा। जैसे आम सुंदर रूप को देख लेता है कहते हैं कि आगे जाके दुख होता है। जैसे कोई लड़का तरुणी को देखता है, बोलते ये तो बहुत सुंदर है, तो ये मन में सपना करने लग जाते हैं, खास वो मेरी हो जाती, पर जब उसकी नहीं होती है तो उसे दुख हो जाता है। या कोई तरुणी सोचता है कि कितना सुंदर दिखता है, सुंदर रूप है इसका, काश हो मेरा होता, पर ये नहीं होता है तो दुख हो जाता है। तो इसीलिए यही संस्पर्श जब होगा, इंद्रिय वस्तु से मिल जाता है, दुख का योनि हो जाता है। इस प्रकार से दुख कैसे, भगवान कहते हैं कि इंद्रिय वस्तु से मिलता है तो दुख मिलता है। और शास्त्र में वर्णन आता है एक एक इंद्रिय इतना बलवान है कि हमें दुखी कर सकता है, हमारे जीवन को नाश कर सकता है। कहते हैं कि ये आंखों के द्वारा एक कीड़ा होता है, इसे पतंगा कहते हैं। आप सब जानते हैं ना पतंगा क्या है, जो जब हम बारिश के मौसम में मोमबत्ती जलाते हैं तो ये कीड़ा जो मोमबत्ती से आकर्षित हो जाता है, जैसे ये लाइट है इस लाइट से आकर्षित हो जाता है और लाइट के निकट आता है। जब ये कीड़ा जो है वो अग्नि को देखता है, ये अग्नि का जो रूप है उसका आंख को भा लेता है, तो वो उड़ उड़ के उस अग्नि के स्पर्श के पास जाता है, कहते हैं कितना सुंदर रूप है। जैसे वो अग के नीचे पकड़ आता है तो ताप का अनुभव होता है, पर ताप का अनुभव जो है वो सहन कर लेता है, मतलब मैं इस सुंदर धूप के पास जाऊंगा, और आगे जाते हैं गर्मी बहुत लग रहा है, पर गर्मी का अनुभव नहीं हो रहा है, सुंदर रूप जो से बाहर लेते हैं, अंत में वो पगला पतंगा जो है अग्नि को स्पर्श कर लेता है, वो सुंदर रूप को स्पर्श कर देता है और वो बर्बाद हो जाता है। ये एक इंद्रिय उसका जीवन को नाश कर देता है। इसी प्रकार से कानों के द्वारा कहते हैं कि कानों के द्वारा वन में, अरण्य में, जंगल में जो हिरण होते हैं उसे पकड़ने के लिए, जो हंटर होता है, हाँ जो मृगारी होता है, वो मृगारी क्या करता है, अच्छा बांसुरी बजाते हैं। ये बांसुरी का ध्वनि सुनता है तो ये हिरण जो है ये ध्वनि से आकर्षित होता है, मतलब कहाँ आ गए ये ध्वनि, कहाँ पे ये ध्वनि है, कहाँ पे ये सुंदर ध्वनि आ रहा है, कैसे करते 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 वो बांसुरी बजाता रहता है और वो हिरण वो बांसुरी वाले के पास आ जाता है, मृगारी के पास आ जाता है, वहीं पे खड़ा रहता है, स्तंभित हो जाता है और वो व्यक्ति उसे बांध के ले जाता है। काम के इंद्रिय के द्वारा वो हिरण फंस जाता है। एक एक इंद्रिय कैसे देखिए व्यक्ति को, जीव को फंसा देता है, कान, आंख और जीवा। ये जीव जो है खाने का बहुत लालच रखता है, इसके अंदर लालचा रहता है। तो देखिए ये जो मछली जो होता है वो उसका मुंह अंदर, मुंह जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, मछली के मुंह के प्रति ध्यान दीजिए, वो हमेशा बंद करते हैं, खोलते हैं और जो भी सामने आता है उसे खाते हैं, थूकते हैं, खाते थूकते हैं, ये हर चीज को चखने का उसका ये रहता है। तो वो जानता है कि ये एक मछुआरे ने अपना कांटा रखा है, तो सोचता है कि वो मछुआरा कांटे के अंदर एक कीड़ा रखता है, वो कहते हैं कि कीड़ा का स्वाद मेरे को सबसे अच्छा लगा, ये कीड़ा का स्वाद को मैं बहुत टेक्निक के साथ खाऊंगा और इस कांटे में नहीं रखूंगा। और खाने के चक्कर में वो कांटा को देखते हैं, कीड़े को देखते हैं और वो सोचता है कि ये मैं कीड़े को टेक्निक के साथ खाऊंगा, पर कांटा के सामने आ जाता है, कीड़ा को खाता है, तो वो मछुआरा टेक्निक के साथ उस मछली को पकड़ लेता है। देखिए जीवा का स्वाद को रोकने की नहीं रोकने के कारण उसका अंत हो गया, मछली का अंत हो गया। स्पर्श चमड़ी के द्वारा कोमल मखमल चीजों को स्पर्श करने का मन करता है, पर ये स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हाथी जो है, जंगली हाथी जो है से पकड़ना बहुत कठिन है। पर वो हाथी पकड़ने वाला क्या करता है, वो एक हथनी को उस तरफ रखता है, हाँ, और उस हथनी को स्पर्श करने के लिए वो हाथी जब जाता है तो वो हथनी जो है उसे स्पर्श करके और आगे भाग जाती है, दूसरे रास्ते से भाग जाता है। और ये हाथी जो पागल होकर उस हथनी के पीछे भागने लग जाता है इस प्रकार से, तो वो जो है हाथी पकड़ने वाला व्यक्ति वो एक बहुत बड़ा खड्डा बना के रखता है, वो हाथी हथनी पकड़ने के चक्कर में उस खड्डे के अंदर फंस जाता है और बेचारा हाथी जो हम 2000 लोगों का एक साथ मार सकता है वो कमजोर हो जाता है, खाया पिया बगैर वो कमजोर हो जाता है। हाथी तो रोज 200 किलो खाता है पर सिर्फ 5-10 दिन के लिए नहीं खिलाते हैं तो वो कमजोर हो जाता है। तब उसे पकड़ लेता है कौन, वो हाथी वाला। अब स्पर्श करने के चक्कर में पगला हाथी फंस गया, हिरण फंस गया, वो मछली फंस गया और वो पतंगा फंस गया। अब सुनने के चक्कर में भवरा जो होता है, एक भवरा होता है ऐसे कि वो भवरा कभी कभी कमल की खुशबू से आकर्षित हो जाता है, वो भवरे के अंदर इतना शक्ति है कि कमल के फूल को आर पार कर सकता है, पर कमल का खुशबू से इतना भा लेता है कि कमल के फूल के निकट जाता है उसे सूंघते रहते हैं। उसे पता है सूर्य ढक रहा है और कमल का फूल अब वो संकुचित हो रहा है, वो बंद हो रहा है। पर ये पगला सोच रहा है कि अब मैं जाऊंगा थोड़ा सा छेद है उसमें से चला जाऊंगा। ऐसे सूर्य ढल जाता है और ये कमल पूरी तरह से संकुचित हो जाता है और वो बेचारा सूंघते उसमें सूंघने के द्वारा बंद होने के कारण वो घुटन का अनुभव करके मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। ये 5 इंद्रियों के द्वारा ये 5 जीव का मृत्यु हम देखते हैं। पर हम देख सकते हैं ये हाथी में स्पर्श इंद्रिय का बहुत जोर रहता है और मछली में मुंह का जीवा का ज्यादा बल रहता है और पतंगा में आंख का और घोड़े में नासिका का और हिरण में कान का। पर मनुष्य में ये पांच के पांच इंद्रिय बहुत बलवान है, पांचों के पांच इंद्रिय बलवान है, यानी कि आंखों के द्वारा भी खतरा, कानों के द्वारा भी खतरा, नासिका के द्वारा भी खतरा और जीवा के द्वारा स्पर्श इंद्रिय के द्वारा भी खतरा। ये सब हमें खतरा में आंख हमेशा चाहते हैं कि सुंदर रूप को देखूं, सुंदर रूप को देखूं, सुंदर रूप को देखूं। और कभी कभी तो कविता भी गाते हैं, हाँ मेरे सपने की रानी कब मुझे मिलेगी, हाँ ऐसे भी गाते हैं क्योंकि वो सुंदर रूप को देखना चाहता है, सुंदर गाना मधुर ध्वनि को सुनना चाहता है, अच्छे अच्छे चटपटा चीज को स्वादन करना चाहते हैं, खा खा के डायबिटीज हो जाते हैं, फिर भी हम सोचते कि और खाएंगे रसगुल्ला। स्पर्श करने का मन करता है पांचों तरफ से, कदम स्तरीय स्थिति से क्या हम बच सकते हैं, यही स्पर्श भोगा। कहते कि इंद्र इंद्र वस्तु को स्पर्श करेगा तो दुख आएगा, पर इससे बचने का तरीका भक्तों के पास है। शास्त्र में वर्णन आता है कि यही इंद्रिय जब भगवान की सेवा में लग जाता है दुख नहीं सुख देता है, परम सुख को देता है। कहते हैं कि ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति रोचते। कहते हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परतम निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचे। कहते हैं कि ऋषिकेश इंद्रिया, ये इंद्रियों को ऋषि कहते हैं, ऋषिकेश इस ऋषि इंद्रियों को इंद्रिय भक्त के जो स्वामी है, इंद्रिय के स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं, ऋषिकेश यानी कि इंद्रिय के स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं। हाँ जगत के ईश्वर को जगदीश कहते हैं, जैसे ऋषि के ईश्वर को ऋषिकेश कहते हैं। जब इस इंद्रियों के इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा देते हैं, ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते, जब इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, आंखों को कानों को जीवा को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो परम सुख का अनुभव होता है। जैसे जैसे शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में एक महान भक्त का वर्णन आता है जिसका नाम है अम्बरीश महाराज। ये अम्बरीश महाराज ऐसे महान भक्त हुए, ऐसे महान भक्त हुए। कहते हैं कि अम्बरीश महाराज ऐसे महान भक्त हुए, उन्हें मारने के लिए एक बार दुर्वासा मुनि आया था, दुर्वासा मुनि को क्रोध आया था, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए एक बहुत बड़ा राक्षस को उत्पन्न किया, हाँ एक राक्षस को उत्पन्न किया, और राक्षस को उत्पन्न किया तो वो राक्षस जब आया उनके सामने मारने के लिए, अम्बरीश महाराज कुछ नहीं किए, वो भगवान का स्मरण किए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का उच्चारण कर रहे थे। जब वो राक्षस जो था अम्बरीश महाराज को मारने आया, तब भगवान ने देखा मेरे भक्त के ऊपर अपकष्ट आ रहा है, तो सुदर्शन चक्र को भेजा। वैसे तो सुदर्शन चक्र को एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसे एक निर्देश दिया गया है कि जब भी भक्तों पे खतरा आएगा तो सुदर्शन चक्र तुरंत आकर से काट देता है। तब वो सुदर्शन चक्र आया, उस राक्षस को काटा, और वो सुदर्शन चक्र जाके बाद में दुर्वासा मुनि को मारने गया। जो दुर्वासा मुनि भक्त अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास कर, वो दुर्वासा को मारने सुदर्शन चक्र गया। तो देखिए वो है अम्बरीश महाराज, भक्त कितने शक्तिशाली होते हैं। तो देखिए ये अम्बरीश महाराज क्या करते थे, वो अपने इंद्रियों को इंद्र के स्वामी भगवान की सेवा में लगा देते थे। इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है कि बहुत सुंदर वर्णन आता है, वो अपने मन को अपने आंखों को अपने मुख को अपनी जीवा को कैसे भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो कहते हैं कि सबई मन कृष्ण पदारविंद वाचां वैकुंठ गुणान वर्णन करो हरे मंदिर मदनादिषु श्रुति चक्र अच्युत सत्कत उदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्वृत्य गत्वा स्पर्श अंग संगमम गृहनं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलसया रसनम तद अर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदासनो अर्पणे शिरो ऋषिकेश पदापि वन्दने कामं जदासेन तु काम कामया यत उत्तम श्लोक जन आश्रय। तीन श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे कोई अपने इंद्रियों के इंद्र के क्षेत्र स्वामी के लगा के परम सुख का अनुभव कर सकते हैं और ऐसे भक्तों के संगति को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। कहते हैं कि
सबै मन कृष्ण पदारविंद यो,
वो अम्बरीश महाराज निश्चित रूप में अपने मन को सबै मन कृष्ण के पदारविंद, कृष्ण के पदारविंद में लगाए थे, भगवान के चरण कमलों में लगाए थे। भगवान के चरण कमल क्यों कहते हैं? भगवान के चरण कमल इसलिए कहते हैं कि ये एक विनम्र भाव है। चरण जो है सबसे नीचा भाग होता है व्यक्ति का, तो भगवान के चरण कमल में भक्त अपना मन रखते हैं। ऐसे तो भगवान के चरण कमल में भक्त अपना मन लगाते हैं। कहते हैं कि अम्बरीश महाराज का मन हमेशा भगवान के चरण कमल में ही था।
वाचां च वैकुंठ गुणान,
जब भी इनके वाचा जीवा चलता था तो वो भगवान का ही गुणगान करता था। भगवान कितने सुंदर है, भगवान कितने दया दयालु है, भगवान सबका रक्षा करता है, भगवान अपने भक्त वत्सल है। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को हर खतरे से बचाते हैं। ये अपने मुख से कहते थे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से बादशाह का इस्तेमाल करते, जीवा का इस्तेमाल करते। करो हाथ के द्वारा वो क्या करते थे, हाथ के द्वारा लोग संसार में पैसे गिनते हैं, पर करो हरे मंदिर माध्यम, जो अम्बरीश महाराज जो पूरे 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 विश्व के छत्रपति स्वामी थे, वो हाथ से मंदिर विष्णु के मंदिर के मार्जन करते थे। करो हरे मंदिर मार्जन आदिशु और श्रुति कानों के द्वारा, कानों से फिल्मों का गाना नहीं,
श्रुति च अग्र अच्युत सत कथा उदय,
इस कान को भगवान की कथा श्रवण करने में लगा लेते थे। इस प्रकार से हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाते हुए कहते कि
मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो,
आंखों से वो मुकुंद लिंगालय, मुकुंद भगवान का एक नाम है जो मुक्ति प्रदान करता है, उस मुकुंद का भगवान कृष्ण का सुंदर दर्शन करते थे।
मुकुंद लिंगालय शरीर का
आलय दर्शने दृशो, दोनों आंखों से दृशो उनका दर्शन करते थे। फिर कहते कि
तद्वृत्य गत्र स्पर्श अंग संगमम,
कहते हैं कि तद्वृत्य तब अपने स्पर्श जो है, अपना जो स्पर्श जो है, स्पर्श इंद्रिय जो है वो उनके सेवकों का सेवा करने में, सेवक उनको अंग स्पर्श करने में लगाते थे। और इस प्रकार से आगे नसिका को
ग्रीनम च तत्पाद सरोच रोवे,
कहते हैं कि नसिका को भगवान के चरण कमल में अर्पित पुष्प को सूखने में लगाते थे, बाहर के सेंट को नहीं। इस प्रकार से उस इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाते, कहते हैं कि जीवा को चटपटा चीज खाने में नहीं,
श्रीमत् तुलसया रसनम तत् अर्पिते,
भगवान के चरण कमलों में श्रीमत् तुलसी जो लगता है विशेष स्वादिष्ट करने में। बहुत सारे भक्त लोग अपने जीवा में हमेशा तुलसी रखते हैं और उसका आस्वादन करते हैं क्योंकि ये तुलसी भगवान को बहुत पसंद है। तो कहते हैं कि पादो चलने के द्वारा पांव को भगवान के मंदिर के परिक्रमा करने में लगाते थे, यहाँ वहां नहीं जाते थे, फिल्मों देखने के लिए नहीं जाते थे।
पादो हरे क्षेत्र पदा नुस्पर्शने,
और सिर को, ये सिर को
शिरो ऋषिकेश पदापि वन्दने,
सिर को ऐसे थाम के नहीं रखते थे, ऋषिकेश भगवान कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक को पदारविंद में मस्तक को अभिवंदन करने में लगाते थे। और इस प्रकार से कहते कि हे कृष्ण आप मेरे मालिक हो, मैं आपका दास हूँ, आप सब कुछ हो, मैं निकृष्ट कुछ भी नहीं हूँ, आप विभु हो और मैं अनु हूँ। और कहते हैं कि काम च दास, मैं आपका सदैव दास हूँ, ना तू काम काम, इसके अलावा मेरा और कोई कामना नहीं। इस प्रकार से कहते हैं यथा उत्तम श्लोक जनाति। इस प्रकार से हम सब जो है अगर अपने इंद्र के स्वामी में लगाएंगे तो हम परम अनुभव को करते हुए, अनुभव परम आनंद का अनुभव करते हुए अपने जीवन को इस संसार में रहते हुए पा सकते हैं परम आनंद, जो सुख की खोज में हम सब हैं, जिस सुख की खोज में अपने इंद्रिय अलग अलग इंद्रियों वस्तु में लगा रहे हैं और उसके बाद दुख का अनुभव कर रहे हैं। नहीं, यही इंद्रिय जब भगवान की सेवा में लग जाता है परम सुख और आनंद का अनुभव होगा, और वो आनंद ऐसा आनंद होगा जो कि हमेशा बढ़ता रहेगा और उसमें रुकावट नहीं होगी। ये आनंद प्राप्त करने के लिए भक्ति करना होगा, और ये भक्ति की अनेक अनेक विधि है, और इस कलयुग में सबसे सरल विधि जो कि कलयुग जो कलह का समय है, हम कहते हैं कि कलयुग जो है कलयुग दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तन है कृष्ण से मुक्त समय प्रयोजन। ये कलयुग केवल दोष ही दोष के है, कलर का अर्थ है झगड़ा। कहते हैं ना छोटे छोटे बातों में बट गया संसार, छोटे छोटे बच्चों में झगड़ा, देश देश में, प्रांत प्रांत में, शहर शहर में, और घर घर में, और घर के अंदर में, और घर के अंदर क्या व्यक्ति के अंदर मन के अंदर भी लड़ाई होता है। तो कलह लड़ाई दोष, इसमें दोष ही दोष है, हर जगह पे लूट मार, हर प्रकार पे हर प्रकार गलत चीज होता है, दोष ही कलह दोष नहीं रहा। जन अस्ति एक महान गुण है, एक महान गुण है कीर्तन है वह कृष्ण से, वो है कीर्तन, कृष्ण के भगवान का कीर्तन, कीर्तन में कृष्ण से मुक्त शरण प्रबोध, ऐसे करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे और परम आनंद का अनुभव करेंगे। और वो कीर्तन क्या है, हरे कृष्णा, बोली हाथों ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे कीर्तन करके हम परम आनंद का अनुभव करेंगे। आप मानो या ना मानो, इस कीर्तन का कीर्तन करते हुए गाते हुए अनेक अनेक लोग जो कि संसार में गंदे से गंदे काम कर रहे थे, गंदे से गंदे थे, वो महान संत हो के गए। संसार के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, ये हरे कृष्ण महामंत्र, गोलोक का प्रेम ग्रंथ, गोलोक का प्रेम ग्रंथ, भगवान के धाम का प्रेम ग्रंथ, चैतन्य महाप्रभु जो लेकर आते हैं इस धरातल पे, वो पूरे विश्व पे वितरण किए, वो इस पूरे विश्व में जो अमेरिका नाम का जो देश है, जो कि सबसे सबसे पाश्चात्य देश, जो सबसे गया गुजरात देश है, उसमें भी न्यूयॉर्क जो सबसे गया गुजरात, और उसमें भी एक सबसे सबसे खड़ा जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में गए थे, और वहां पे लोग वो नशा करते थे, छोटे मोटे नशे नहीं, बीड़ी तंबाकू नहीं, बड़े नशा LSD और हफीम और हेरोइन और ऐसे ऐसे भयंकर, जिसका नशा एक बार कोई लेता है तो इसके बगैर रह नहीं सकता है, ऐसे नशाकार उनको उन्होंने भगवान का नाम का नशा जब दिया, वो ऐसे नशे भयंकर नशाओं को छोड़कर भगवान का नाम का नशा में लुप्त होकर वो जो कि संसार के द्वारा देश के द्वारा सबसे बदमाश या गए गुजरे थे, हिप्पी कहलाते थे, उन हिप्पियों को बड़े बड़े संत बनाकर हैप्पी बना दिया, कैसे, ये कीर्तन कराते कराते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी श्री प्रभुपाद की, प्रभुपाद जी महाराज एक ऐसे महाराज हैं जो कि विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का ऐसा 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 प्रचार किए कि हर कोई जो इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने लगे उनके जीवन में हर प्रकार का नशा चला गया, और वो भगवान के नाम का ऊंचा स्वाद का अनुभव करने लगे। इस संसार में अनेक अनेक लोग हैं, अनेक अनेक नशा, अनेक अनेक चीजों से प्रभावित रहते हैं, पर हाँ प्रभुपाद जी एक ऐसे महान संत हैं कि सबके अंदर से वो गलत नशा निकाल दिया और हरे कृष्ण महामंत्र का नशा डाला दिया। ये नशा जो छोड़ना बहुत कठिन है, भारत में लोग बड़े कफाइन और हीरोइन तो मिल लेंगे, कैफीन और हीरोइन तो मिल लेंगे, पर वो चाय कॉफी से प्रभावित है, चाय कॉफी भी एक प्रकार का नशा है, ये जब लग जाता है तो उसके बगैर हम रह नहीं सकते। और कैफीन जो है, कॉफीन जो है, इसमें कैफीन है, और चाहे जो इसमें एक निकोटीन का नशा है
जिससे
हम इसीलिए हम चाहते हैं कि आज भी मुझे पीना है, आज भी पीना है, नहीं पीएंगे तो थोड़ा सा सरबत होता है। पर इस संसार में अनेक अनेक स्वामी संत आए, वो सबको भगवान के साथ जोड़े, वो सबको अलग अलग आदतों से जोड़ने का छोड़े, पर चाय कॉफी के चक्कर से कोई छुड़ा नहीं पाया। पर स्वामी प्रभुपाल जी एक ऐसे स्वामी हैं, उनके संस्था में जो भी जुड़ जाता है वो तुरंत हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते चाय और कॉफी का जो नशा है उस वो भी छुड़ा देता। इस प्रकार से प्रभुपाल जी जो है संसार में प्रचार किए हैं, हम सब का परम सौभाग्य है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावित संघ के संघ में हम आ रहे हैं। इस संगति का लाभ अगर हम लेंगे तो हम भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके इंद्र के स्वामी ऋषिकेश सेवन भगवान की सेवा में लगाते हुए परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। पर इसका शुरुआत अगर करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जो हम उच्चारण करेंगे तो हमारा जो सुख का जो खोज है उसका अंत हो जाएगा, हम परम सुख का अनुभव करेंगे। चैंट एंड वी हैप्पी, हमारा सुख का खोज खत्म हो जाएगा। और जब तक इस हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप नहीं करेंगे हमारा सुख का खोज चलता रहेगा, और इस सुख का खोज का अंत हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण से होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। अपने अपने वाणी को विराम दूंगा। आप में से किसी के अंदर कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुआ होगा, किसी को कोई प्रश्न पूछना होगा, या कुछ बात समझ में नहीं आया होगा, या कुछ टीका या टिप्पणी करना होगा प्रवचन के ऊपर, तो आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? अगर आप क्या पास कोई प्रश्न नहीं है तो इसका अर्थ ये होता है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भक्ति उत्तम कोटि का विधि है जिससे हम परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के मन में संशय नहीं रहता है वो प्रश्न नहीं पूछता है, या जिस व्यक्ति को कुछ भी समझा नहीं होगा वो प्रश्न पूछ सकते हैं। हम जो सब कुछ समझ लिया वो प्रश्न नहीं पूछते हैं, या जो सब कुछ भी नहीं समझा वो प्रश्न नहीं पूछते। जो सुनते हैं उसके मन में कुछ बात समझ में नहीं आया वो जरूर प्रश्न पूछते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ क्योंकि आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण किए तो आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, और अगर आप सब कुछ समझ गए तो ये बात जरूर समझ गए तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से ही परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम निवेदन करते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र का आप सदैव जप करते रहिए, इसे सदैव आप जप करते रहोगे आप सदैव आनंद का अनुभव करोगे। हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की जय। अब हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, इस कीर्तन में आप लोग भाग लीजिए। अब हम कीर्तन करेंगे साथ साथ, कीर्तन के साथ साथ नृत्य भी करेंगे। यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, एक नमूना देंगे किस प्रकार से नृत्य करना चाहिए। स्वामी प्रभुपाद जी जो संसार के संस्थापक आचार्य है, हर प्रवचन के बाद कहते हैं कि हमें कीर्तन करना होगा, और एक कीर्तन इस प्रकार से होगा, जब मैं गाऊंगा तब आप हाथ जोड़कर रहोगे और कानों से सुनोगे, और पांव एक पांव आगे फिर पांव को पीछे, फिर दूसरे पांव आगे फिर पीछे पीछे करोगे। ये प्रभु जी आपको एक नमूना देगा, दोनों हाथ जोड़कर पहले आप अच्छी तरह से दर्शन देखिए, और पहले एक पांव को आगे कीजिए, फिर दूसरे पांव को, उस पांव को पीछे लीजिए, फिर इस पांव को आगे करके, इसे स्वामी स्टेप कहते हैं, ठीक है ना। ये जब मैं गाऊंगा मेरा गाना हो जाएगा तो तुरंत आप लोग एक साथ गाएंगे दोनों हाथ ऊपर करके, और पांव उसी तरह से आगे पीछे होता रहे, इसे चौंस कर तो चलिए हम कीर्तन में भाग लेते हैं।
हरे कृष्णा